ये आकाशवाणी दिल्ली है। संसद के दोनों सदनों में दिल्ली के कोचिंग सेंटर में छात्रों की मृत्यु के मामले पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोचिंग सेंटर में तीन विद्यार्थियों की मौत पर स्वतः संज्ञान लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू अदालत में आरोप पत्र दायर किया। दिल्ली के जम्मू कश्मीर हाउस में पांच दिवसीय जम्मू कश्मीर संभाव उत्सव आज सम्पन्न हो गया। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्राची प्रिया। संसद के दोनों सदनों में आज दिल्ली के यूपीएससी कोचिंग सेंटर में छात्रों की मृत्यु का मामला उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस ने इस घटना की जांच की मांग की। शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि ये दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पिछले 10 वर्षों से सरकार है और पिछले 2 वर्षों से नगर निगम पर भी उन्हीं का शासन है, फिर भी जल निकासी की प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया।
बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहां तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, द कॉज ऑफ डेथ ऑफ दीज 3 स्टूडेंट्स इज द अटर एंड एब्सोल्यूट एपथी ऑफ द आम आदमी पार्टी रूलिंग डिस्पेंसेशन इन दिल्ली।
कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि ऐसी घटना में कितना भी मुआवजा दिया जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि भवन नियमों समेत अनेक नियमों का उल्लंघन किया गया। श्री थरूर ने मामले की विस्तृत जांच की मांग की।
It's a shocking situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through the UPSC exam have been shattered, and the hopes of the family have been shattered, sir. This is a matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime, sir. There are a number of serious issues. There is, sadly, a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on.
दिल्ली के कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों की मौत की दुर्घटना पर राज्यसभा में भी आज अल्पकालिक चर्चा हुई। चर्चा के आरंभ में भारतीय जनता पार्टी के डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने घटना को आपराधिक लापरवाही बताते हुए इस मामले की विस्तृत जांच कराने और जिम्मेदारी तय करने की मांग की। उन्होंने यह भी सवाल किया कि शहर की सरकारी एजेंसियों द्वारा जल निकासी प्रणालियों की सफाई पर कितना पैसा खर्च किया गया था। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई। श्री त्रिवेदी ने दिल्ली सरकार से मानदंडों का पालन करने वाले कोचिंग केंद्रों की सूची बनाने को कहा। आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने कहा कि पूरे देश से विद्यार्थी सिविल सेवक बनने की आशा से दिल्ली के कोचिंग केंद्रों में आते हैं। उन्होंने मांग की कि हालिया घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह मुद्दा देश के होनहार युवाओं तथा शहरी बुनियादी ढांचे के साथ साथ शासन के अन्य पहलुओं से भी संबंधित है। उन्होंने कहा कि कोचिंग व्यवसायी बन गई है और अब जब भी अखबार खोलते हैं तो पहले 1 या 2 पन्ने कोचिंग सेंटर के विज्ञापनों के होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में बारिश का पानी भर जाने से 3 विद्यार्थियों की मौत का संज्ञान लिया है। आयोग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नालों की सफाई कराने की अपील नजरअंदाज किए जाने के आरोप चिंताजनक हैं। आयोग ने इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त को करने का फैसला किया है। नई दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक दुर्गेश पाठक को नोटिस जारी कर सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि नोटिस का अनुपालन नहीं होने पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली नगर निगम ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में नियमों के उल्लंघन के आरोप में 13 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। शनिवार को एक आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 विद्यार्थियों की मौत के बाद यह कार्रवाई की गई है। नगर निगम की एक टीम ने कल इस इलाके में कई कोचिंग सेंटर की तलाशी ली और बेसमेंट में वाणिज्यिक गतिविधियां चला रहे संस्थानों को सील कर दिया। इस घटना ने कि इस घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी में भवन निर्माण नियमों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित न करा पाने के लिए दिल्ली नगर निगम की कड़ी आलोचना हो रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कोचिंग सेंटर मामले पर कहा है कि सरकार और नगर निगम के अधिकारियों की वजह से ये हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी मंत्रियों के आदेश का पालन नहीं करते हैं। श्री भारद्वाज ने हादसे के दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।
वीडियो शिकायत के साथ मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंतरासु जी को भेजी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इसके मुख्य सचिव को बोल रहे हैं, वो कार्रवाई नहीं कर रहे। PWD प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कह रहे हैं, वो कार्रवाई नहीं कर रहे। सबूत दे दिए, वो कार्रवाई नहीं कर रहे। काम ठेकेदार कर रहे हैं, पेमेंट ठेकेदारों को हो रही है, करोड़ों की ठेकेदारी हो रही है। कौन जिम्मेदार है? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। गृह मंत्रालय को भी लिख के बता दिया तो भी MHA ने कोई कार्रवाई नहीं की।
दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में पानी भरने से हुई तीन छात्रों की मौत को लेकर भाजपा ने आज दिल्ली सरकार और नगर निगम के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही के कारण छात्रों की जान गंवानी पड़ी है। श्री सचदेवा ने कहा कि शहर में नालों की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर कर्मचारी मंत्रियों के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
आप दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, सरकारी गाड़ी आपको चाहिए, सरकारी सुविधाएं आपको चाहिए, सरकारी बंगला आपको चाहिए, वेतन भत्ता आपको चाहिए, और फिर आप कहते हैं कि अफसर आपके नहीं सुन रहे तो फिर कुर्सी पे क्यों बैठे हो? दो त्यागपत्र। हर वो मंत्री, हर वो विधायक जिसकी अफसर नहीं सुनते वो कॉम्प्रोमाइज होता है, कमीशन घाटा चोरी करते हैं, इसलिए अफसर नहीं सुनते। दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड आपका है, आपकी जिम्मेदारी थी। वो तीन बच्चे जो थे देश का भविष्य थे, जिनको आपका भ्रष्टाचार ले गया। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार चोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त है।
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से छात्रों को अपने भविष्य के साथ ही अपना जीवन गंवाना पड़ा है। श्री यादव ने आज राजधानी के किराड़ी क्षेत्र में पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। दिल्ली में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन कर रही है। दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में बारिश का पानी भरने से हुई तीन छात्रों की हत्या के बाद राजधानी के राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर इलाके में दिल्ली नगर निगम द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर लिया गया है। दिल्ली नगर निगम महापौर डॉ शैली ओबेरॉय ने बताया कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में आज राउंस एवेन्यू अदालत में आरोप पत्र दायर किया। श्री केजरीवाल को 26 जून को CBI ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। वे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज संबंधित धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी के जम्मू कश्मीर हाउस में चल रहे पांच दिवसीय जम्मू कश्मीर संभाव उत्सव के दूसरे संस्करण का आज समापन हो गया। इस उत्सव में जम्मू कश्मीर से आए लोगों ने अपनी कला, वाणिज्य, व्यंजन, परिधान और उत्पादों का प्रदर्शन किया। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर रेजिडेंट आयोग द्वारा आयोजित इस उत्सव में जम्मू कश्मीर से आए उद्यमियों ने 30 स्टॉलों पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। इन उत्पादों में कला, खाद्य, चित्रकारी, हस्तशिल्प उत्पाद शामिल रहे। उत्सव में एक जिला एक उत्पाद पहल और जीआई टैग वाले उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए। उत्सव में 125 से अधिक कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी प्रदर्शित किया गया। संभाव उत्सव का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण, लघु व्यवसाय, उद्यमिता, संस्कृति, आर्थिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा देना था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर हाउस के प्रबंधक और प्रोटोकॉल अधिकारी सचिन ने बताया कि यह उत्सव एक अनूठी पहल था जिसने लोगों को जम्मू कश्मीर की विरासत और संस्कृति से अवगत करवाया है।
संभाव वन फैक्ट्री में ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें भी हमारे कुछ नियर अबाउट 60 स्टॉल्स थे। हमारे जेएनके सरकार ने डिसाइड किया कि हम इसको क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे। अभी हमने 25 को इसी महीने जो है संभाव को वापस जो है ऑर्गेनाइज किया। इस बार हमारे कोई 30 के अराउंड स्टॉल्स हैं, उसमें हैंडलूम्स के प्रोडक्ट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं, कुछ स्पाइसेस हैं, लोकल प्रोड्यूस जो भी है। प्लस इस बार हमने जो हमारे ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं हमने उनको भी स्क्रीन में लाया।
संभाव उत्सव का उद्घाटन इस महीने की 26 तारीख को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया था। इस अवसर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का उल्लेख किया था। प्रादेशिक समाचार के लिए अभिषेक कपिल।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज डायबिटीज यानी मधुमेह की रोकथाम और उपचार पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के एंडोक्रोनियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉ राजेश खड़गावत श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से डायबिटीज के लक्षण, कारण और उपचार सहित स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-23-42-10-50 और 011-23-31-44-44 पर प्रश्न पूछ सकेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। #AskEIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित होगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाली पतंग और मांझे की बिक्री से पहले दिल्ली पुलिस ने अवैध मांझे के खिलाफ शहर में विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके पास से अवैध चाइनीज मांझे की 50 चक्री जब्त की गई है। पुलिस ने चाइनीज मांझे को लेकर एक परामर्श भी जारी किया है। पुलिस ने अपील की है कि नागरिक चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करें क्योंकि यह लोगों के साथ जानवरों और पक्षियों के लिए भी जानलेवा है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार भारत में बाघों की आबादी वर्तमान में और बढ़ ही रही है। भारत में वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए थे। इनका प्रबंधन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। विश्व के 80% बाघ भारत में मौजूद हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के साथ आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री यादव ने बाघ संरक्षण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना तलाशने की आवश्यकता पर जोर दिया। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर की उपलब्धि को सराहने के लिए आज फरीदाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया भी शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनु भाकर ने पदक जीतकर इतिहास रचा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में आज दिल्ली के कोचिंग सेंटर में छात्रों की मृत्यु के मामले पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोचिंग सेंटर में 3 विद्यार्थियों की मौत पर स्वतः संज्ञान लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू अदालत में आरोप पत्र दायर किया। राजधानी के जम्मू कश्मीर हाउस में 5 दिवसीय जम्मू कश्मीर संभाव उत्सव आज संपन्न हो गया। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।